أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 92 سے 109 تک. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، یعنی تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کے لیول تک تم رسائی نہیں کر سکتے. کب تک نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک کنڈیشن ہے، وہ پوری کرو گے تو نیکی کے مقام کو پہنچو گے. اور وہ کیا کنڈیشن ہے؟ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم انفاق کرو، تم خرچ کرو اس میں سے جو تم محبت رکھتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، اس میں سے جب تک نہیں خرچ کر دیتے تم اس وقت تک نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے. دیکھیں، نیکی جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈفرینٹ اس کے تصورات ہیں. کوئی انسان حقوق اللہ ادا کرنے کو ہی سب سے بڑی نیکی سمجھتا ہے، کوئی انسان حقوق العباد ہی کو سب سے بڑی نیکی سمجھتا ہے. تو ڈفرینٹ ویوز ہیں نیکی کے بارے میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نے نیکی کی پیک کو پہنچنا ہے نا، نیکی کے مقام کو پہنچنا ہے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں لن آ گیا نا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ تم نیکی کے مقام تک پہنچ سکو جب تک کہ تم یہ کام نہیں کرتے. اور وہ کام کیا ہے؟ اس میں سے خرچ کرنا جو آپ کو محبوب ہے، جو چیز آپ کی فیوریٹ ہے، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس میں سے خرچ کرنا. اب یہ چیز انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز اس کو بہت پسند ہوتی ہے وہ اس کو کس کے لیے رکھتا ہے؟ اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے، یا اس کے لیے بچا کے رکھتا ہے جو اس کو بہت محبوب ہوتا ہے. ایسا ہے نا. ہم دیکھیں، مثلاً آپ کے پاس کوئی چیز ہے ایسی جو آپ کی بہت فیوریٹ ہے، مثلاً کوئی ایسا سیٹ ہے آپ کو بڑا پسند ہے، آپ کہتی ہیں کہ مجھے فلاں وقت میں ملا تھا، شادی پہ یا اس پہ، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میرا فیوریٹ ہے. اچھا، اب آپ اس کو کس کے لیے رکھتی ہیں بتائیں؟ اپنے بچوں کے لیے. کیوں؟ بچوں سے آپ کو شدید محبت ہے اس لیے. انسان اپنی محبوب چیز اس کو دینا چاہتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے، اور جن کا محبوب اللہ ہے ان کے لیے اپنی محبوب چیز اس کے راستے میں دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، وہ تو اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا، دینا مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں کو تھوڑی دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں. تو تب جا کے انسان نیکی کی اس لیول کو پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے قرب کا لیول ہے، یا جو بہت بڑی نیکی کا لیول ہے، اس کا ایک نیکی کا جو مقام ہے، اس کو تب پہنچے گا. اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو انفاق کی بات آئی ہے، انفاق میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو ہی آپ کہیں کیش ہی انفاق ہے، میں کیش دوں، اتنا ڈونیشن، $2 وہاں دے دوں، 10-20 وہاں دے دوں، یہ بس ہو گیا. نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سی چیز ہے. کسی کے لیے اپنا زیور محبوب ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مکان، کسی کے لیے کوئی جاگیر، کسی کے لیے کوئی باغ، کسی کے لیے کوئی سواری، بس جس کو انسان سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، کہتا ہے بس میرے پاس رہے. فرمایا اس کو قربان کرو، جب تک وہ اپنے پیارے کو نہیں دو گے، اپنی پیاری چیز، تب تک تم نیکی کے اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ درجہ پا نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چھری ہاتھ میں لیے ہوئے، हालांकि वो बेटा है जो बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है, सिर्फ ख्वाब में देखा और छुरी लेके मैदान में आ गए। जब ये आयत उतरी थी, सहाबा कराम देखे वो लोग ऐसे नहीं थे कि बस आयत पढ़ के आगे चले गए, आयत सुन ली आगे चल पड़े, नहीं, वो ऐसे थे जिन्होंने हर हर आयत पे अमल करना होता था। इसी वजह से वो जब कोई आयत उतरती थी सुनते थे, तो अब वो उनको ये हो जाता था हमने इसके ऊपर अमल कैसे करना, कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखें मिसालें मिलती हैं कि अबू तलहा मालदार सहाबी थे और मस्जिद नबवी के सामने बैरहा नामी उनका एक बाग था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी तशरीफ ले जाया करते थे, और उसमें कुआं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वजू करते थे, पानी पीते थे, बड़ा मीठा पानी उसमें होता था। कितनी खुशी होती होगी उनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग में आके यहाँ का पानी पसंद करते हैं, यहाँ पे आके वजू करते हैं, कितनी बड़ी नेकी है। ये भी देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके यहाँ पे वजू वगैरह कर रहे हैं। अब जब ये आयत उतरी तो अबू तलहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा तो सबसे ज्यादा प्यारा माल मेरा यही बाग है, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में सदका किया, अल्लाह ताला मुझे भलाई अता फरमाए, अपने पास इसे मेरे लिए जखीरा कर ले, आपको इख्तियार है जिस तरह चाहे इसको तकसीम करें। सोच सकते हैं आप, इतना वैल्यूएबल बाग कि मस्जिद नबवी के साथ था, बहुत कीमती था वो बाग, इसलिए कि खूबसूरत बाग था और फिर इसमें कुआं भी था और फिर इतना मीठे पानी का कुआं, तो बहुत बड़ी वैल्यू थी। ऐसे ही समझ लें कि आज आपके न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे आपकी कोई बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग रेंट पे चढ़ी हुई है, आपकी जरिया आमदनी भी है वहाँ से, आप इतनी वैल्यूएबल जगह भी है, इतनी एक्सपेंसिव है, उसको उठा के आप अल्लाह के रास्ते में दे दें, किसका इतना दिल होगा और इतना हौसला होगा। हमारे तो दिल वहीं पे ऐसे मुट्ठी में आ जाते हैं, हाय ये दूँ, नहीं कुछ और दे देती हूँ ना, ज़रूरी थोड़ी कि यही दूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया जो तुम्हें पसंद है, पता चलेगा ना किसको अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि जिससे मोहब्बत है हम उससे चीज़ें बचा बचा के नहीं रखते। कभी आपने अपने बच्चों से कहा कि ये चीज़ मैंने नहीं अपने बच्चों को देनी, ये मुझे बहुत पसंद है, नहीं कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही तो है सारा कुछ, क्योंकि वो हमें प्यारे बहुत है ना। तो जिसको अल्लाह से प्यार है, अपने रब से प्यार है, वो उससे चीज़ें बचा के नहीं रखेगा, फिर वो कीमती तरीन चीज़ भी उसको देगा। और जिसको ये यकीन है कि अल्लाह रखता नहीं है, वो इससे बढ़ा चढ़ा के मुझे वहाँ देगा जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ पे मैं मोहताज हूँगी। आज मुझे शायद इस बिल्डिंग से जो रेंट आता हो उसकी इतनी ज़रूरत ना हो, आज शायद मुझे जेवर की इतनी ज़रूरत ना हो, ये मेरा पसंदीदा सेट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही संभाल के रखती हूँ, वो सारा साल लॉकर में ही पड़ा रहता है, साल में एक दफ़ा निकलेगा या शायद एक दफ़ा भी नहीं निकलता। आप बताएं जितनी आपकी ज्वेलरी लॉकर में पड़ी हुई है कितनी दफ़ा साल में निकालती हैं और पहनती हैं, बस वो पड़ी है पड़ी ही है, बस ये तसल्ली है कि हाँ वहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये बैंक के लॉकर में रखवाने से हमें तसल्ली है, ले इसलिए अच्छा जब चाहिए होगी तो फिर निकाल लेंगे, लेकिन अल्लाह के पास रखवाने में, उसके लॉकर में रखवाने में हमें दिल घटता है, यहाँ ये पता नहीं मिले कि नहीं मिले। नहीं, अल्लाह डिपॉजिट करेगा, ऐसा सेविंग अकाउंट है वो कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ेगी हशर के मैदान में तब अल्लाह निकाल के देगा, ये लो मेरे पास महफूज थी तुम्हारी ये चीज़। जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमें वहाँ पे मिले, अच्छी से अच्छी चीज़ चाहेंगे या बुरी चीज़ चाहेंगे, अच्छी से अच्छी चाहेंगे ना, तो फिर उसको वहाँ के लिए डिपॉजिट कराएं। और अल्लाह के रास्ते में देखें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम कचरा चीज़ निकाल के देते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। तो आपको बेस्ट चीज निकाल के देनी, अपनी अपने आप को जो महबूब है, जो खुद अच्छी लगती है वो दे, क्योंकि वो उस बंदे को देना नहीं है, वो अल्लाह को देना है। और आज दोगे तो कल वही चीज पाओगे, यहाँ पे तो शायद 2-4 साल इस्तेमाल करते, उसके बाद दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे। हाँ मेरे ख्याल में जो लॉकर से जेवर हैं वो शायद किसी शादी पे ही निकलते होंगे, और वो भी सारे के सारे थोड़ी हम पहन लेते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पे 2-4 दफ़ा पहन लो कि किससे ज़्यादा क्या होगा, उसके बाद यहीं छोड़ के चले जाओगे, वहाँ नहीं मिलेगा ये, अनलेस कि आप उसको अल्लाह के रास्ते में दे देते हो, फिर वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। हर चीज़ में से अगर हम ये सोचें इतना मैं दुनिया के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं कहा कि सारा दे दो, मिम्मा अल्लाह को पता है, इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान जो है ना वो माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है, उसको बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, ये जेवर है, मकान है, बाग है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, कैश है, सेविंग अकाउंट है, तो मिम्मा उसमें से कुछ तो दो ना, कुछ तो निकालो उसमें से, सारा नहीं मांगा अल्लाह ने, फरमाया कुछ तो दो। तो अब मसलन ऐसे देख लेंगे हमारी जो चीज़ें, इसमें से इतना मैं दुनिया के लिए अपने रख लेती हूँ, इतना मैं अपनी आखरत के लिए रखती हूँ, वो भी तो मेरा घर है ना, वो परमानेंट घर है, तो उस घर के लिए, अपने परमानेंट घर के लिए मैं ये रख लेती हूँ। जैसे बाज़ लोग कहीं जाते हैं कमाई करने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा जो जमा करते रहते हैं, हम अपना घर बनाएंगे तो उसके लिए ये चीज़ें लें, ये चीज़ें ये यहाँ से जमा कर लें, यहाँ से जमा कर लें, कि जब जाके घर बनाना होगा उसमें ये डेकोरेशन रखेंगे, उसमें ये चीज़ें रखेंगे। ज़्यादातर जो लोग गल्फ वगैरह में गए होते थे, वहाँ पे परमानेंट घर नहीं होते लोगों के, तो वो यही इकट्ठे करते रहते हैं कि हम जाएंगे ना, अपने कोई क्रॉकरी खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, कोई कुछ खरीद लिया, कि अपने घर जाके जब अपना घर बनाएंगे उसमें सजाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक परमानेंट घर के लिए तैयारी करें कि इतना मेरे यहाँ के लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर निकले कि मेरे उस घर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ये सोच के खर्च करें, तब खर्च करने में दर्द नहीं होगा। और अगर ये सोचेंगे हाय चला जाएगा, हाय फिर नहीं मिलेगा, तो वो फिर हाय हाय रहेगी, फिर दे नहीं सकेंगे। और इन्फाक के अंदर सिर्फ फिर माल नहीं है, इल्म भी आ गया, आपकी एनर्जीज भी आ गई, ताकत भी आ गई, क्योंकि देखें बाज़ दफ़ा हमें अपना वक्त सबसे ज़्यादा महबूब होता है, ये वक्त नहीं दे सकती मैं, और चीज़ें दे सकती हूँ, इतने डॉलर दे सकती, मेरे से चेक लिखवा लो, लेकिन टाइम नहीं मैं दे सकती। तो यहाँ पे तो महबूब चीज़ को फरमाया उसको खर्च करो, अगर टाइम आपको बहुत महबूब है, वो आप सोचती हैं कि ये नहीं मैं दे सकती, नहीं उसी को खर्च करना होगा। तो अल्लाह के रास्ते में अपनी प्यारी चीज़ जो आपको प्यारी लगती है वो दें, वक्त निकालें, अपनी एनर्जीज निकालें। वो ऐसे ही है जैसे एक बुज़ुर्ग ने एक दफ़ा सोचा मैं मुझे क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महबूब है, तो उन्होंने फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत महबूब है, अपनी इज़्ज़त ना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने तहिया कर लिया कि आज से मैं अपनी इज़्ज़त को कुर्बानी देता हूँ, अब मुझे कोई भी कुछ कहेगा मैं कुछ नहीं मायूम करूँगा, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं करूँगा, मैंने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। तो अल्लाह के रास्ते में कभी कुर्बानी दे के देखें, कभी कुछ दे के देखें अल्लाह को, फिर देखें कि वो कैसे आपको वापस पे बैक करता है, दुनिया में भी देता है और आखरत में तो देगा ही देगा, ठीक है। और बेहतरीन सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या है, दुश्मनी करने वाले रिश्तेदार के लिए बेहतरीन सदका है। और आप देखें कि हज़रत अबू तलहा ने जब ये बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा कि ये मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, तो जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनाचे अबू तलहा ने उसको अपने रिश्तेदारों में और चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया, किस में, चचाजाद भाइयों में। पता है ना आपको शरीके के रिश्ते इनको कहते हैं, इनके साथ तो बड़ी दुश्मनियाँ होती हैं, जायदादों की दुश्मनियाँ होती ही इनके साथ, उनको देना कितना मुश्किल है। इंसान कहता है कहीं और दे दूंगी, अपने फलां रिश्तेदार को मैंने नहीं देना, उन्हें फलां वक्त में ऐसा किया था, फलां वक्त में ऐसा किया था। लेकिन जब इंसान देता है तो आपको इससे क्या, जब मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया तो फिर क्यों ना वहां पे दूं जहां पे अजर ज्यादा है, कि वो जरूरतमंद भी है और रिश्तेदार भी है, डबल अजर हो गया। तो ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदार पे खर्च करने के लिए इनको हुक्म दिया और इन्होंने अपने हाथों से खर्च किया और कोई चूं चरा नहीं की। ये है अल्लाह के रास्ते में देना। हम मेक श्योर करते हैं कि वहां ना जाए बस। बुखारी और मुस्लिम में है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि हजूर मुझे अपने तमाम माल में सबसे ज्यादा जो महबूब है ना वो खैबर की जमीन का वो हिस्सा है, मैं इसे अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। फरमाइए मैं क्या करूँ? आपने फरमाया इसे वक्फ कर दो, असल तो रोक लो और फल अल्लाह के रास्ते में दे दो, यानी इसका जितना भी फल उतरा करेगा वो अल्लाह के रास्ते में जाए। देख रहे हैं आप कि हर एक आ रहा है और फिर ये सोच रहे हैं मैं क्या खर्च करूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैंने इस आयत की तिलावत की तो सोचा मुझे कौन सी चीज़ प्यारी है, तो मुझे कोई चीज़ भी एक लौंडी से ज़्यादा प्यारी नहीं थी, एक कनीज़ थी इनकी जो इनको बहुत पसंद थी, तो मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिया। अब तक भी मेरे दिल में उसकी ऐसी मोहब्बत है कि अगर किसी चीज़ को अल्लाह के नाम पे दे के फिर वापस लेना जायज़ होता तो मैं कम अज़ कम इसे निकाह ही कर लेता, इतनी उनको महबूब थी। तो अब आपसे सवाल है, अब आप इस आयत को पढ़ के आज क्या अमल करेंगे कि कौन सी चीज़ है जो आपको महबूब है और वो आप इतना हौसला करें कि अल्लाह के रास्ते में दें। और अगेन मैं ये कहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया वक्त होता है, उसकी जान होती है, उसकी सेहत होती है, किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना कोई जेवर, ना कोई कपड़ा, ना कुछ भी नहीं अगर आपके पास, तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान ही लगा दें, अपना वक्त ही लगा दें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है उसमें से खर्च कर दें। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे किसी चीज में से भी, किसी चीज में से भी, यानी अब ये नहीं है अब हम सोचें कि महबूब चीज ही खर्च करनी है उसके अलावा तो कुछ खर्च नहीं करना, नहीं, कोई भी चीज तुम खर्च करोगे चाहे वो थोड़ी कीमत की है या ज्यादा कीमत की है, चाहे वो पुरानी है या नहीं है, चाहे वो तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तुमने कहा चलो अब यही मैं दे देती हूँ, तो वो भी सवाब से खाली नहीं है। ये नहीं समझना कि इस पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब फैशन बदल जाते हैं, कई कपड़े या पहन पहन के आप बोर हो जाते हैं, अब दिल नहीं है उनको पहनने का, तो किसी को दे दें। बाज़ लोगों के घरों में चीज़ें पड़ी सड़ती रहती हैं लेकिन उनको ये हौसला नहीं होता कि किसी को दें, क्यों दें किसी को हम? हाँ बस देना नहीं है, हाथ खुलता नहीं है देने का, कपड़े पड़े पड़े बोसीदा हो जाते हैं लेकिन देने का हौसला नहीं, उन्हीं चीज़ों को बार बार पहनते रहेंगे, 10-10 साल हो गए लेकिन बस रखा हुआ है, किसी वक्त पहन लेंगे ना, हौसला नहीं है कि दें। हम ये भी तो कर सकते हैं कि जब हम नया कोई जोड़ा बनाएं तो पुरानों में से कोई एक दे दें अल्लाह के रास्ते में, मगर ये हौसला कौन करे? अलमारियां फटफट के बाहर आ रही हैं कपड़ों से लेकिन हमसे वो दिल नहीं होता कि हम किस तरह से दें। अगर देना भी है तो इतना कोई पुराना निकाल के देंगे जो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रह गया, लेकिन चलो कुछ भी देते हो जो भी दोगे इन्नल्लाह भी आलिम, ये याद रखना अल्लाह जानता है तुम जो खर्च कर रहे हो, जिसकी जो इस्तेआत है वो उसके मुताबिक कर ले, हर एक की इस्तेआत भी एक बराबर नहीं होती, हर एक के पास एक बराबर चीज़ नहीं होती। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप किसी और को दिखाएं ना दिखाएं, किसी को पता चले ना पता चले, ये वो नेकी है, अल्लाह खुद जानता है आप अपने हाथ से क्या निकाल रही हैं, किस दर्जे की चीज़ है, आपको कितनी महबूब है। देखिए सहाबा कराम के जब हम वाकयात देखते हैं ना, इतनी तंगी का ज़माना था और एक सहाबी हैं बकरी ज़िबा करते हैं, उसकी सिरी जो है वो साथ वाले हमसाए को दे देते हैं, भेज देते हैं उनके घर, और वो हमसाए उसे अपने पास नहीं रखते, आगे किसी और को दे देते हैं, वो भी आगे अपने पास नहीं रखते वो किसी और को दे देते हैं, वो अगले अपने हमसाए को दे देते हैं। इसी तरह ये बकरी की सिरी चक्कर खाते खाते वापस उसी घर में आ गई जहाँ से चली थी, क्योंकि उनके अंदर देने का जज्बा था। اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت لینے والا نہیں ہوتا کہ بس یہاں سے بھی مل جائے یہاں سے مل جائے. وہ گیونگ ہوتا ہے, کیا دے دوں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جہنم سے الگ رہنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا کرنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جو جہنم سے الگ رہنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہے, کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہوگا؟ ہر ایک اپنی اپنی بات کر رہا ہوگا, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اسے چاہیے مرتے دم تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے کریں. جہنم سے الگ رہیں گے جنت میں چلے جائیں گے سلامتی کے ساتھ, لیکن یہ کون کرے؟ جو اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا برتاؤ, جو اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا سلوک, جو اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا خرچ, جو خود پہننا چاہتے ہیں ویسا دوسرے کو دیں, جو خود تحفہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا دوسرے کے لیے کریں. یہ حوصلہ کس کے پاس ہوگا؟ اتنا بڑا حوصلہ چاہیے, اتنا بڑا دل چاہیے. اور اسی طرح نیکی کے لیے بعض جگہ پہ یہ بھی آیا ہے, حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو بیر ہے نا اس کا مطلب ہے جنت. یعنی اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہیں خرچ کرتے جو جس سے تمہیں بہت محبت ہے. تو آج ہمارا ہوم ورک یہ ہے, ہم بیٹھ کے سوچیں ہمیں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور پھر ہم یہ دیکھیں کیا ہم اس چیز کو اللہ کے راستے میں دے سکتے. اپنے ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا نا, کس کے لیے کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب, وہ مال ہے, وقت ہے, اور کیا چیز ہے جو بہت محبوب ہے. آگے اگلی آیت میں, آیت 93 میں اور اس کے بعد آیت 96 میں یہود کے دو اعتراضات تھے جن کا جواب دیا گیا. اب یہودی وہ اور چیزوں میں تو جو رسالت اور نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے تھے, ان کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے, مگر ایسی غلط سلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے تھے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں, لوگ اس دین سے رک جائیں اور اس طرح. تو اب انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا جس کا اعتراض کا جواب آیت 93 میں, اور ایک اعتراض کیا تھا جس کا جواب آیت 96 میں. ٹھیک ہے, تو پہلا ایک اعتراض یہاں پہ جس کا جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ نبی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار, ہم ان کے طریقے پہ ہیں. تو کیا اب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ دیکھو ہماری تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے تو انہوں نے اس کو حلال کیا ہوا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کے اوپر جواب ان کو دیا جا رہا ہے, کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اونٹ کا گوشت ہم نے حرام کیا ہے, ہر کھانا حلال ہے. الطعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سارا خنزیر بھی حلال ہو گیا, نہیں یہ نہیں, مطلب جو جن چیزوں کو تم حلال نہیں سمجھ رہے, جن چیزوں پہ تم اعتراض کر رہے ہو, وہ سارے کھانے تو حلال ہی تھے بنی اسرائیل پہ. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے جو اسرائیل نے خود حرام کر لیا تھا اپنے اوپر. اسرائیل کون ہے یہاں پہ مراد؟ یعقوب علیہ السلام. سوائے جس چیز کو یعقوب علیہ السلام نے خود حلال حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا حرام کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اصل میں اونٹ کا گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہوا تھا. وجہ کیا تھی اس کی؟ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ ان کو شیاٹیکا پین تھی, تو ان کو جو وہاں پہ جو بھی طبیب وغیرہ ہوں گے انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بھائی جیسے آپ پرہیز کرنے کو نہیں, آپ کو کہتے ہیں آپ کو کولیسٹرول ہے تو آپ اس چیز سے پرہیز کریں, اس سے کریں, تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ یہ والا گوشت نہ کھائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس وجہ سے یہ گوشت کھانا چھوڑ دیا. اب ان لوگوں نے یہ ان کے ظاہر ہے ڈسینڈنٹس تھے بنی اسرائیل جو تھے انہی کی اولاد میں سے, تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے یعنی یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. ٹھیک, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو یعنی حرام کر لیا تھا. और यहाँ पे क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफसी मिन कबली अन तुनज्जल अल तौरात। ये तो उससे पहले की बात है जब तौरात नाजिल की गई, ये तो बहुत पहले की, क्योंकि याकूब अलैहि सलाम कब आए थे? याकूब अलैहि सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहि सलाम के पोते हैं, ठीक है ना, इसहाक अलैहि सलाम के बेटे। अब फिर इनकी आगे नस्ल चली, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई और इन सब से फिर क्या है, बनी इसराइल चले। फिर आगे 1000 साल गुजर गए, तो उसके बाद कहीं जाके मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और उनके ऊपर तौरात उतरी थी। तो ये तो बहुत पहले की बात है। तो तुम जो यहूद है उनको कहा जा रहा है कि यहूदी हो तुम कहने लगे हुए हो कि ये हराम है और ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते हराम है और ऐसे है। असल में बात तो ये कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर इसको हराम किया था एक वजह से, और ये तो तौरात उतरने से बहुत पहले की बात है। ठीक है, कुल फतू बितौराती, बस ले आओ तौरात को, फतलू हा फिर पढ़ो उसको, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बताओ कहाँ पे तौरात में लिखा हुआ है, तौरात लाओ चेक करो कहाँ लिखा हुआ है कि ऊंट का गोश्त हराम है। तो तुम ऐसे ही कह रहे हो कि ये क्या बात हुई, ये तो अपने आप को नबी कहते हैं और नबी कह के फिर ऊंट का गोश्त खाते हैं और इसको उन्होंने हलाल किया हुआ है, हालांकि ये तो हराम है। समझ आई आपको उनका एतराज़? समझ आया ये उनका एतराज़? ये उस एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है, और कितनी ज़बरदस्त बात है कि जवाब कैसे दलील के साथ दिया जा रहा है। फ़तू बित्तौरात फ़तलूहा इन कुंतुम सादिकीन। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? दलील से बात करनी चाहिए, लेकर आओ कुरान, कुरान में दिखाओ अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो हम माने उसको, हदीस में दिखाओ कोई ऐसी बात है तो हम उसको माने, बजाय इंसान बहसें करता रहे। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये प्यारा तरीका हमें बताया कि देखो ये हलाल हराम किसी ख्वाहिश से नहीं है, किताब से फैसला होगा। किताब ले आओ और उसमें से पढ़ के बताओ। आज भी अगर गैर मुस्लिम को इतराज़ करें या अपने मुसलमान जो कितनी बिदात या इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं, तो फैसला किससे होगा? किताब से। गैर मुस्लिमों को भी आप कह सकते हैं लाओ अपनी तौरात और उसमें दिखाओ कि कहाँ लिखा है, लाओ अपनी इंजील और उसमें दिखाओ कि उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ईसा अलैहि सलाम ने यह कहा हो कि मुझे खुदा मानो। ठीक है, और इसी बात को आगे इसी की कंटिन्यूएशन है, फमन इफ्तरा अलल्लाह अल-कदीबा, तो जो कोई घड़ ले अल्लाह पे झूठ। अब ये तो अगर तौरात में भी नहीं लिखा हुआ कि ये गोश हराम है, तो तुमने खुद ही अपनी तरफ से झूठ अल्लाह पे बांधा कि अल्लाह ने हराम कर दिए। मैं बाद ही जालिका, इसके बाद, किसके बाद? इस इल्म आ जाने के बाद, ये आपको पता चल गया, आपके सामने ये बात है, इसके बाद भी अगर तुम अल्लाह पे झूठ मानते हो, तौरात में भी देख लो उसमें भी नहीं है, फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, तो यही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। इनका जुल्म क्या है कि अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया और अब बातें अल्लाह पे लगा रहे हैं, अल्लाह ने हराम किया हुआ है, आप लोग क्यों खा रहे हैं? ठीक है, जब आपके सामने दलील आ गई, मिम्बादी जालिका मतलब क्या, जब इल्म आ गया, दलील आ गई, हक सामने आ गया, किताब में देख लिया ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर वो कोई ये कहता रहे नहीं अल्लाह ने हराम किया, तो अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं, और यही लोग जालिम हैं। उल सदकल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह ताला ने जो बात की है वो बिल्कुल क्लियर है, वाज़े है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर पहले तुम कन्फ्यूज थे भी तो आप, तुम्हारे सामने सच्ची बात आ गई है। वमन असदकु मिनल्लाह क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी हो सकती? तो अल्लाह ने सच फरमाया, फत्तबिऊ, तो पैरवी करो मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की जो यकसू थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलो, जो शरीयत इब्राहिम में हलाल थी चीज़ें, मुसलमानों को भी कहा जा रहा है तुम उनको हलाल समझो। यहूद के तराजात से आपको नहीं मुतासिर होने की ज़रूरत, शक में ना पड़ो, ये कंफ्यूज करना चाह रहे थे ना मुसलमानों को, ताकि उनको इसमें डाल दें कि ये तो दीन सच्चा नहीं हो सकता, फिर ये कैसे हो सकता है, एक पैगंबर के लिए वो हराम थी और अब आके हलाल हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलें। وہ کیا تھے؟ یکسو تھے وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جن سے تم اپنا تعلق ملاتے ہو وہ تو مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ سارے نبیوں کا قبلہ تو یہ بیت المقدس رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھی شروع میں مدینہ میں آ کے اسی طرف نماز پڑھی تھی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، پھر تحویل قبلہ کی وہ آیات ہم نے پڑھی تھی، پھر قبلہ کیسے چینج ہوا. تو اب مسلمانوں نے قبلے کو کیوں چینج کر دیا؟ اب کیا ایسا ہو گیا؟ پہلا تو یہی قبلہ تھا، پہلے بیت المقدس ہی تھا. تو یہ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں سارے نبیوں کا قبلہ چھوڑ کے یہ اپنا نیا ہی قبلہ بنا کے بیٹھ گئے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، جو پہلا گھر دنیا میں عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے. یہ بھی اس کی تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، ظاہر ہے یہاں پہ جنات وغیرہ تو تھے نا، تو اس سے بھی 2000 سال پہلے یہ کعبہ تعمیر کیا گیا، فرشتوں نے اس کو بنایا تھا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جب آئے تو پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. تو یہ پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو دنیا میں بنایا گیا. اتنی بڑی اس کی یعنی بات ہے نا. اب یہ کیسا گھر ہے جو مکہ میں ہے؟ یہ پہلا گھر تھا، فرسٹ ون. اور یہ کیسا ہے؟ مبارکن، با برکت ہے. اس میں اتنی برکت ہے کہ دیکھیں آپ وہاں پہ ایک نماز ادا کرتے ہیں 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے. ایک عمرہ کرتے ہیں تو ایک سے دوسرے عمرے کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حج ادا کرتے ہیں تو انسان کا حج مبرور کا اجر جو ہے وہ کتنا ملتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا بچہ نیو بورن کی طرح ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ مبارک گھر ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ باعث ہدایت ہے. جس کو رہنمائی چاہیے تو رہنمائی کا جو سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ یہ گھر ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ یہاں پہ کعبہ بنائے، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی. اس جگہ پہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، اس کا طواف کیا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ باقی تھا، مگر جب طوفان نوح آیا تو اس کے نشانات مٹ گئے، یہ گھر گر گیا تھا، طوفان جو اتنا بڑا تھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی قواعد کو، اس کی بنیادوں کو پہ دوبارہ تعمیر کی تھی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کر دیا، پھر ایک دفعہ کسی حادثے میں دوبارہ یہ گر گیا. تو قبیلہ جرہم جو تھا، جو یہاں پہ آباد تھا، اس کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی تھی، پھر دوبارہ یہ گر گیا. ظاہر ہے حالات حوادث آتے رہے. تو امالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر یہ گرا تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں اس کی تعمیر کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے. اور یہی وہ وقت ہے جس وقت وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حجر اسود کو لگانے کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ کون اس کو نصب کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کیا تھا، جب ان لوگوں نے کہا تھا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا تھا جو آدمی سب سے پہلے یہاں پہ داخل ہوگا تو وہی کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو سب نے یہ سنا ہوا ہے نا واقعہ. تو پھر اس وقت تعمیر ہوا تھا، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بنایا تھا اس طرح سے اس کی تعمیر نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کیونکہ ان کے پاس جو مٹیریل تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا، اور ان کے پاس نہیں تھا اتنا کہ یہ اور بنا سکیں اس کو مزید. تو بیت اللہ کا وہ حصہ जिसको आज हतीम कहते हैं, वो आपने छोटी सी दीवार देखी है ना खाना काबा के साथ, हतीम की है, एक सर्कल सा बना हुआ है। तो ये हिस्सा काबा का पार्ट था, लेकिन चूंकि उनके पास मटेरियल नहीं था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। और उस वक्त से काबे के दो दरवाजे होते थे, एक दाखिल होने का होता था और एक निकलने का, लेकिन कुरैश ने सिर्फ फिर एक ही दरवाजा बाकी रखा जो ये ईस्ट की तरफ है ना, मशरिक की तरफ, जिसको आप आज देखते हैं। थर्ड उन्होंने चेंज क्या की थी कि इस दरवाजे को सतह ज़मीन से काफ़ी ऊपर कर दिया। आपने देखा है कि अभी सीढ़ी से आप जा सकते हैं, वैसे नहीं आप चढ़ सकते उस दरवाजे में, इसलिए उन्होंने ऐसे किया था कि हर आदमी आसानी से अंदर ना जा सके, जिसको इजाज़त दी जाए वो ही जा सके। तो ये थोड़ी सी दो तीन उनके ज़माने में, कुरैश के ज़माने में ये चेंजेस हुई थी, दो दरवाज़ों की जगह एक दरवाज़ा हो गया, दरवाज़ा ऊंचा कर दिया, और हतीम की जगह पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके, उनके पास मटेरियल नहीं था, वरना ऐसा नहीं था, ये पूरा कवर्ड था, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इस तरह पूरा तामीर थी इसकी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हज़रत आयशा से फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तामीर को गिरा के इसको बिल्कुल जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था वैसा बना दूँ, यानी हतीम को भी उसके अंदर इनक्लोज कर दूँ और ये सारा इस तरह से कर दूँ, और जो कुरैश ने चेंजेस किए हैं उनको दोबारा वैसे ही कर दूँ। लेकिन जो मुसलमान नए नए हुए हैं उनमें कोई गलत फहमी पैदा होने का ख़तरा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में ही इसको छोड़ दिया, और उसके बाद इस इरशाद के बाद इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो ये काम नहीं हो सका था, समझ आई ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मेरा दिल ये चाहता है। क्यों मुसलमानों में कोई गलत फहमी क्यों पैदा हो सकती थी कि जो नए नए मुसलमान हैं, देखे हर वक्त लोग उनको बहकाते रहते थे, हर एक का ईमान एक लेवल का थोड़ा ही होता है, तो हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए कि देखो अब ये काबे को भी ढहा के दोबारा ये अपनी तौर पे बनाने लगे हैं, अब ये भी काम करने लगे हैं, अब ये जो काबा ऐसे चला आ रहा है और इस तरह से था, अब इसको भी ये ऐसे करेंगे, तो कुछ उनके मतलब ख़तरा था कि ऐसे ही इनके अंदर कोई मतलब ऐसी कोई शकुक व शुभात ना पैदा हो, तो इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन जब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के भांजे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी हुई थी, जाहिर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इनकी हुकूमत हुई, खुलफाए राशिदीन के भी बाद इनकी हुकूमत हुई थी, तो इन्होंने फिर ये खाना काबा को मुनहदिम करके गिरा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक वही जो बुनियादें थी ना जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उसी पे इस काबा को दोबारा बनाया। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे, इनकी हुकूमत मक्का पे बहुत कम अरसा रही, और उनके बाद ये हज्जाज बिन यूसुफ ये आ गया, उसने मक्का पे फौज कुशी की, इनको शहीद कर दिया, हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया, और उसको ये गवारा नहीं था कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ये कारनामा कैसे रहती दुनिया तक कायम रहे और उनकी तारीफ हो, इसलिए उसने लोगों में ये मशहूर कर दिया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ये गलत काम किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हालत में छोड़ा था हमें उसी हालत में इसको रखना चाहिए। इस बहाने से उसने फिर इसको गिराया और इसको फिर दोबारा वैसी तामीर कर दी जो कुरैश ने बनाई थी। अब देखें, कोई भी बंदा आता है वो ये सोचता है शायद कि उसने हमेशा रहना है, लेकिन उस वो भी दुनिया से चला जाता है। जब हज्जाज बिन यूसुफ दुनिया से चला गया, बाज़ मुस्लिम बादशाहों ने फिर ये हदीस जब पढ़ी जानी, तो फिर उनका इरादा हुआ कि हम बैतुल्लाह को दोबारा अब बनाएं जैसे वो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी। लेकिन उस ज़माने के जो इमाम थे हज़रत इमाम मालिक, जिनसे ये आज मालिकी फ़िरके भी अपने आप को वो करते हैं मंसूब, इमाम मालिक जो थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि अब बार बार इसको ना गिराया जाए, हर आने वाला जो है ना फिर इसको एक खिलौना ही बना लेगा कि जिसका दिल चाहता है वो अपनी नामवरी के लिए वो ये काम शुरू कर लेता है, इसलिए अब जिस हालत में भी है ना इसको इसी में छोड़ दो, अब ये मुनासिब नहीं है इसको बार बार ऐसे करना। तो सब उम्मत ने, सब ने इसको कबूल किया था, इसी वजह से आज तक वही जो हज्जाज बिन यूसुफ ने जैसी तामीर की हुई थी ना वैसी बाकी है। हाँ, इसमें मेंटेनेंस होती रहती है, लेकिन इसको फिर चेंज नहीं किया गया, तो वो जो बुनियादें थी ना جس کو ایک یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ہم نے جو پڑھا تھا, وہ قواعد جو تھیں وہ تو پہلے سے موجود تھیں, ان کے اوپر ہی پھر دوبارہ دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہے. اور آج جو تعمیر ہے وہ پورا یہ سارا جو سرکل ہے نا, جو پورا حتیم ملا کے وہ ساری ہے. اور یہ پہلا گھر تھا حدیث سے معلوم ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی, تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد, آپ نے فرمایا بیت المقدس. پھر پوچھا گیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا. ٹھیک, تو وہ بعد میں بنا تھا, یہ پہلے بنا. ٹھیک ہے, فیہ آیاتم بینات, اس میں نشانیاں ہیں کھلی. کس میں؟ یہ جو پل بیت ہے, یہ جو حرم ہے, یہ جو جگہ ہے, اس میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں. سب سے ایک بڑی نشانی ہے وہ تو یہ زمزم ہی دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی, کتنی بڑی نشانی ہے. اس کا پانی کب سے چل رہا ہے, حضرت بی بی ہاجرہ کے زمانے سے, ہزاروں سال ہو گئے ہیں اس کا پانی. جو عمرے پہ جائے, جو حج پہ جائے, اس کو اس کا پانی پینا ہے. پھر اتنا بھر بھر کے بھی لے کر آتے ہیں. پھر اس کے پائپس کہاں تک اب بچھا دیے گئے, مدینہ منورہ تک پہنچ گئے, وہاں سے بھی پانی لوگ لیتے ہیں. اس کا پانی نہیں ختم ہوتا. اور اب سائنس کہتی ہے کہ اس کو جب دیکھا گیا کہ اس میں اتنی نیوٹریشن ہے کہ کوئی بندہ اگر صرف زمزم پی لے نا تو اس کو ساری نیوٹریشن مل جائے گی. 40 دن تک وہ صرف زمزم پی کے ہی زندہ رہ سکتا ہے. 40 دن تک کچھ بھی نہ کھائے, اور کوئی چیز نہ کھائے, تو اتنی غذائیت ہے اس میں. تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اسی طرح دیکھیں یہ بھی ایک نشانی ہے, جو حجر اسود اور رکن یمانی اب چیک کیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے پتھر نہیں ہیں, یہ کہیں اور سے آئے ہیں. دنیا میں ایسا پتھر پایا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں, آپ لوگ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ بیت المقدس تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, تو پھر 40 ایئرس کے بعد کیسے تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی جو بیت المقدس بنایا تھا وہ نہیں, بالکل اس فرسٹ ٹائم نہیں بنایا تھا انہوں نے, اس کی بھی یعنی پہلے سے بنیادیں تھیں جن کے اوپر ہی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے بنایا. ٹھیک ہے, تو اس چیز اس کو نوٹ کر لیں اس بات کو. تو اس میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں, اس میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں, اور آپ اس کی برکتوں کا تو اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ یہاں پہ کیسا ڈیزرٹ ہے. جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو کوئی چیز اگ نہیں سکتی, لیکن ہر موسم کا, ہر علاقے کا پھل وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے, سبزیاں وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں, ضروریات وہاں پہ ساری جو زندگی کی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. دنیا جہاں سے حاجی 35-40 لاکھ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال, اور کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے یا یہ چیز مل نہیں رہی, بلکہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں دنیا میں. اور جگہوں پہ تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اگر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو چیز مہنگی ہو جاتی, وہاں پہ سستی ہو جاتی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سارا سال بھی وہاں پہ ہر وقت عبادت ہو رہی ہے, ہر وقت 24/7, کوئی لمحہ دن یا رات میں, کوئی دن عید ہو, شب رات ہو, کوئی ہو, کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں جب وہاں پہ عبادت نہ ہو رہی ہو, اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اس کی طرف منہ کر کے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو دنیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, کسی نہ کسی جگہ نماز ہو رہی ہے, ہر وقت لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی برکتیں ہیں اس جگہ کی. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھیں وہاں پہ ایک نشانی, ایک بہت بڑی یہ بھی نشانی ہے کہ وہاں پہ جب حاجی جاتے ہیں وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ پہاڑ بن جائے کنکریوں, مگر وہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو, صرف ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے. جن کا حج قبول ہو گیا ان کی کنکریاں فرشتے لے گئے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے نا. ये थोड़ी है कि वो वहां से निकाल के फिर बाहर फेंक देते हैं, फिर आप उठा के फिर लेके वहां पे फेंक देते हैं, कंकरियां मारते हैं जमरात पे, फिर वो उठा के बाहर रख दें, फिर आप उठा के फेंक, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक निशानी है। आप इसकी निशानियां तो आप देखने लगे, बेशुमार निशानियां, जो वहां पे जाते हैं वो वाकई इस चीज का उनको एहसास होता है कि जो बरकतें और जो अल्लाह की रहमतें वहाँ पे बरस रही हैं। और फिर आप देखें ना क्या ऐसी वो ख़ास जगह, एक चार दीवारी है उस पर काला गिलाफ डाला हुआ, क्या बात है उसके अंदर कि हर एक मुसलमान का दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन तो वहाँ पे है नहीं कि कोई साइट सीइंग हो रही है या क्या ऐसा कोई असीन मनाजिर हैं कि आप देख के बड़े वो नहीं। आप एक दो जगह पे, एक दो दफ़ा किसी जगह पे जाते हैं, उसके बाद इंसान का जी भर जाता है, वो कहता है कि अब तो वो पहले ही देखी भी है जगह। लेकिन क्या बात है इस जगह में कि इतनी दफ़ा भी जाओ, जितनी दफ़ा जाते उतना और शौक बढ़ता है, उतनी और अट्रैक्शन होती है। क्या ये निशानी नहीं है? तो सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया से हर रंग और नस्ल के लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये इस जगह की बरकतें हैं, ये समेट लेते। देखिए मीना है ना, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये ऐसे ही है कि जैसे माँ का पेट होता है ना रहम, उसमें जब बच्चा आता है तो वो कैसे एक्सपैंड हो जाता है, तो मीना की ज़मीन भी ऐसे 35 लाख 40 लाख कितने भी लाख लोग वहाँ पे आ जाते हैं, उसमें समा जाते हैं उस मीना की वादी में। अल्लाह अकबर। तो ये इस जगह की करामात हैं, इस जगह की मौजे हैं, इस जगह की निशानियां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मौजूद है और क़यामत तक बाकी रहेंगी। और सारी दुनिया में एक भी जगह इसकी मिसाल नहीं है, जो कोई और जगह आप नहीं कह सकते कि यानी ये ऐसी हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया एक और इसकी निशानी और एक और इसकी बरकत जो है वह मकाम इब्राहिम, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। इसलिए इसको अलहदा मेंशन किया गया, पहले कहा फी आया तुम बयनात, इसमें बहुत सारी निशानी और एक बड़ी निशानी क्या है, मकाम इब्राहिम। और मकाम इब्राहिम देखें, वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी, और ये वो पत्थर है जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान, गहरे निशान आज तक मौजूद हैं, हजारों साल गुजर गए, ना वो डिम हो रहे हैं ना वो मिट रहे हैं, ऐसे लगता है पत्थर ने अपने अंदर जज़ब कर लिया उनको। और फिर जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई क्रेन तो थी नहीं जिससे ऊपर जाते नीचे आते, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर जाना होता था, ऊपर यानी काबे की तामीर कर रहे थे ना, बुलंदी पे जाना होता था, तो ये पत्थर खुद ब खुद हाइट पे चला जाता था, नीचे उतरना होता था नीचे हो जाता था। तो अल्लाह की निशानी है। आज आप देखें वो जो गोल्डन सा गुंबद सा बना हुआ है उसके अंदर ये पत्थर रखा हुआ, उस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कदमों के निशान, दरवाजे के ना जहाँ पे बैतुल्लाह का दरवाजा है उसके सामने ही है। और अल्लाह ने इस जगह को मुसल्ला बना दिया कि इसके पीछे नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। तो तवाफ के बाद आप जो दो रकतें पढ़ते हैं वो यहाँ पढ़ी जाती हैं। तो ये भी एक निशानी, व मन दखलहू कान आमिनन। और एक और इसकी निशानी इस जगह में कितनी बड़ी ये है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, जो यहाँ दाखिल हो गया वो महफूज है, उसको ना सताया जाएगा, ना उसको कत्ल किया जा सकता है, ना कोई जुर्म करके भी अगर आ जाता है ना तो यहाँ पे इस जगह पे सजा नहीं दी जाएगी, उसको मजबूर किया जाएगा वो हरम से बाहर निकले। इसलिए फुकहा कहते हैं कि वहाँ पे ना उसको कुछ खाने को दिया जाए, ना पीने को दिया जाए, ना उसे कोई ट्रेडिंग करे, ताकि वो यहाँ से निकले, जब वो निकलेगा तो तब उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। यहाँ पे नहीं कुछ सजा दे सकते आप, यहाँ पे नहीं कत्लो गारत कर सकते, यहाँ पे फसाद नहीं कर सकते, यहाँ पे जंगो जदल नहीं कर सकते। और ये आज से नहीं है, इसका ये एहतराम जमाना जाहलियत में भी था, बाप के कातिल को कोई देख लेता था ना, कोई बेटा अपने सामने देख लेता था और वो बेटा मसलन बहुत अरसे से अपने बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, उसके खून का प्यासा है, तो यहां पे अगर उसको सामने नजर आ जाएगा वो अपनी नजरें नीची करके गुजर जाएगा, उसको कुछ नहीं कहेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ना कि अगर मैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल को हरम में देख लूं तो उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। तो इसलिए ये अमन वाली जगह, ये टेंशन फ्री जोन है, इसमें कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। इवन यहां तक कि अब तो खैर इतना आबाद हो गया, अब तो यहाँ पे कोई वैशी जानवर नहीं आते, लेकिन पुराने जमाने में जाहिर है वैशी जानवर आसपास से आ जाते थे यहाँ पे, वो भी यहाँ पे पहुंचते थे ना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सुभान अल्लाह, ना यहाँ का दरख्त काटा जाएगा, ना यहाँ पे जानवर का शिकार किया जाएगा, ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद किया जा सकता। ये इसकी तहजीम है, ये हुरमत है इस जगह की, और ये दुनिया में कोई एक जगह भी दिखा दे जहां पे ये तहजीम। और ये फिर वो घर है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। ये फिर वो घर है कि जहां का हज लोगों के जिम्मे है, अल्लाह का हक है, ये अल्लाह का हक है लोगों के ऊपर कि लोग क्या करें, हिज्जुल बैति, इस घर का हज करें। मगर कौन करे, सारे तो नहीं कर सकते। मनिस्तता इलैहि सबीला, जो इसके रास्ते की इस्ततात रखता हो, जो यहां तक पहुंच सकता हो, जो इतना माल रखता हो कि वो अपने जाने आने का खर्च इस अदा कर सके, और जो अपने पीछे घर वाले हैं उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाए, ये ना हो कि वो पीछे भूखे मरे। ठीक है, ऐसे बंदे के लिए यहाँ पे हज करना जरूरी है। और फिर हाँ, एक और शर्त है कि उसका बदन भी सलामत हो, ये ना हो कि जिस्मानी तौर पे इतना कमजोर और नहीफ और बीमार है कि वो जा ही नहीं सकता, सफर कर ही नहीं सकता। ऐसे बंदे के लिए नहीं है फिर। ठीक है, सेहत भी तो होनी चाहिए ना, जाने के मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसकी सेहत ही नहीं है, बीमार है, तो वो कैसे जाएगा। तो इसलिए वो भी एक ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने इस जगह के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि आप कॉल दें कि लोग इस घर के हज को आए, तो ये आज नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त में उस वक़्त इसके लिए निदा दी थी, पुकारा था। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी पूछ सकते थे, या अल्लाह मैं तो पुकारूंगा लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं सुनने वाला, मैं किसको कहूँ और लोगों तक मेरी बात कैसे पहुँचेगी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, इसलिए उन्होंने ये सवाल नहीं किया, उनको पता था आवाज़ लगाना मेरा काम है, इस आवाज़ को पहुँचाना अल्लाह का काम है ना। तो आवाज़ पहुँची ना लोगों तक, आज तक लोग उस घर के हज के लिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने, अब इस्तेतात का मतलब पता चल गया ना आपको कि इस्तेतात किस किस चीज की इस्तेतात जरूरी है। माल भी होना चाहिए। अब बाज लोग क्या करते हैं, अच्छा हमने हज पे जाना है, बहुत शौक है हमें हज पे जाने का, अब वो हमें अपनी जकात में से दे दें, तो लोग जकात से कहते हैं हम फलां को हज पे भेजना चाहते हैं। तो भाई जिसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो जा सके, उसके ऊपर तो फ़र्ज़ है ही नहीं ये हज, तो आप अपनी ज़कात से फिर कैसे भेज सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी के पास 200-400 रुपया कम है, आपने वो कह रहे हैं इतनी सी मेरे पास बस कमी रह गई है, तो अगर आप ये पूरी कर दें तो आप उसको चलो अपनी ज़कात में से दे दिया। मगर जिसके पास इस्तेतात ही नहीं है, माल खुद है ही नहीं, उसको नहीं आप भेज सकते ज़कात से, क्योंकि उसके ऊपर फ़र्ज़ है ही नहीं। इस तरह पीछे भी तो कुछ छोड़ के जाए ना, ये ना हो कि पीछे बच्चे मांगते फिरे लोगों से, और अपने भी जाने आने की टिकट हो, ये ना हो कि चले तो गए और वहाँ पे जाके कहें कि बस वहाँ चले जाएंगे ना, अल्लाह खुद ही फिर वापस भेज देगा, वहाँ पे लोगों से मांगते फिर रहे हैं या वहाँ पे खाने पीने का गुजारा करने का नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, खाना पीना रहना सब चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और नंबर 2 क्या है, جسمانی استطاعت. نمبر 3 آج کل کے وقت میں یہ بھی ہے من استطاع الیہ سبیلا میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہو, ٹکٹ ہو, جو بھی وہ ہے نا, یہ یعنی اگر ویزا نہیں کسی کو مل رہا, آپ جیسے ہمارے ملکوں میں لاٹری نکلتی ہے تو تبھی لوگ شاید جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ جا سکتے ہیں, تو جس کا نام نہیں آتا وہ پھر نہیں جا سکتا, تو پرائیویٹ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر جس کو استطاعت ہی نہیں ہے راستے کی تو پھر وہ کیسے جائے, سمجھے نا. تو اس لیے پھر ان لوگوں کے لیے بھی یعنی فرض نہیں ہو جاتا. باقی تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ باقی تمام لوگوں کے لیے حق ہے اللہ کا, وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کا حق ہے لوگوں پہ. کتنی بڑی بات ہے, یہ اللہ کا حق ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس استطاعت ہے وہ یہ کہے کہ نہیں پھر کیا کریں, بزنس چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے, جاب سے چھٹی لینا بڑا مشکل ہے, یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کسی نے یہ کہا کہ میں تو اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں کے ٹوائلٹس بہت گندے ہوتے ہیں, تو پھر میں نہیں اس طرح کے ٹوائلٹ یوز کر سکتی, اس لیے ہم تو نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو کوئی کفر کرے, جس کو شوق ہی نہیں ہے کہ میں جاؤں, جو حج کا ہی انکار کرے, جو استطاعت ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں کرتا, بس سیروں پہ چلے گئے لیکن حج میں اب ہاں یہ ہم سے اتنے دھکے نہیں کھائے جاتے, اتنے رش میں ہم نہیں پھنس سکتے, وہاں پہ تو سنا ایک بڑی گرمی ہوتی ہے, ہم سے نہیں وہاں پہ جایا جاتا, تو یہ ایک طرح کا کفر ہے. یہاں پہ کیا فرمایا وَمَن كَفَرَ, کفر کس کو کہا گیا؟ جو حج نہیں کرتا, چاہے اس کے پاس ہے بھی استطاعت پھر بھی نہیں کر رہا. تو یہ کتنی ایک بڑی بات ہے, اور یہ مانوی کفر ہے نا, اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے وہ. ایک تو ہے نا میں نے حج کو ہی نہیں مانتی, تو وہ تو کم ہی لوگ کوئی کہے گا کہ میں حج کا ہی انکار کرتی ہوں, حج ہے ہی نہیں ہے. نہیں, سب مانتے ہیں کہ حج مطلب ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, پلرز آف اسلام میں سے, لیکن بہت سارے لوگ یہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی اس طرف سے غافل رہتے ہیں. اب ہم اپنی چھٹیاں یہاں جا کے گنوا دیں, اس سے بہتر ہم کہیں ویکیشن پہ چلے جائیں, ہم یہ ایسے کر لیں, بہت سارے لوگ یعنی غفلت میں رہتے ہیں. اب ہماری بچیوں کی شادیاں تو اس لیے نہیں جانا, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے حج کی اس کے اندر کے استطاعت کے اندر کہ آپ نے بچیوں کی شادیاں کر دی ہوں تو پھر ہی آپ جائیں, نہیں آئیے. ویسے ہم کسی اپنے ملک جب جانے لگتے ہیں تو تب بچیوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تب ٹھیک ہے, یا بچیاں جا کے کہیں اور یونیورسٹی میں ڈور میں رہنا شروع ہو جائیں تو وہ صحیح ہے, لیکن حج کے لیے ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ بچیاں جوان, تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. بلکہ یہ حج تو اتنا بڑا ہی اس کو بات کہہ دیا کہ یہ سمجھ لو کہ حق اللہ کا ہے تمہارے ذمے, اور حق جتنی جلدی آپ ادا کریں اتنا ہی اچھا ہے نا. اور آپ کے ذمے کسی کا حق ہو تو آپ کہیں کہ آئے میرے اوپر اس کا حق ہے, میں جلدی سے جلدی اس سے فارغ ہوں اس ذمہ داری سے. تو اللہ کا حق اگر کسی کو یاد ہی آ رہے, جبکہ یہ وہ رکن ہے کہ حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا جو حج ہے, اس میں انسان کوئی گناہ نہیں کرتا, اس کی جزا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جنت ہے, صرف جنت, اتنی بڑی بات ہے. اور پھر آپ کا ہی فائدہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو, کیونکہ یہ فقر کو اور گناہ کو اس طرح مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے, اس سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں. سمجھ لیں ہم وہاں سے جا کے آئے تو ہمارے گناہوں سے ہم پاک ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو ڈالتا ہے, تو گناہوں سے بھی دھل گئے اور جنت بھی اس کا اجر. اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے, بہقی کی ہے یہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد حرام کے قصد سے روانہ ہوا یعنی حج کے لیے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا, اس کے اونٹ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا, حتیٰ کہ وہ بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے گا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا, پھر سر منڈوائے گا یا بال کٹوائے گا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. سوچیں ہر قدم کے بدلے, اور ہم جو اتنی دور رہتے ہیں وہاں سے, تو یہاں سے کتنے میل ہو گیا, یا کتنی یعنی گاڑی کے ٹائر کی روٹیشن سوچ لیں, या जहाज कितनी हजारों मील का सफर करके वहां पहुंचेगा, तो एक एक जो उसका यानी जो वो माइल या एक एक लम्हा जो वो आगे बढ़ेगा, तो सोचें एक एक कदम जो वो आगे बढ़ रहा है कितनी नेकियां मिल रही हैं, कितने गुनाह माफ हो रहे हैं, जितनी दूर से जा रहे हैं उतना ही देखें ज्यादा फायदा मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करने वाले की मगफिरत की जाएगी और जिसके लिए हज करने वाला इस्तगफार करेगा उसकी मगफिरत की जाएगी। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मस्जिद खैफ में बैठे हुए थे कि एक अंसारी और एक सकफ़ी आए, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया और कहा या रसूलल्लाह हम आपसे एक सवाल करने आए हैं। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारा सवाल बयान करूं और अगर तुम चाहो तो तुम सवाल करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाएं, हमारा ईमान और ज़्यादा होगा। अंसारी ने सकफ़ी से कहा तुम सवाल करो, उसने कहा बल्कि तुम सवाल करो। अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह हमें बताइए। आपने फरमाया तुम ये सवाल करने आए हो कि जब तुम अपने घर से बैतुल्लाह के लिए रवाना और बैतुल्लाह का तवाफ करो तो इसमें तुम्हारे लिए क्या अजर है, और तवाफ़ के बाद दो रकत नमाज पढ़ने का क्या अजर है, और सफ़ा मरवा के दरमियान सही का क्या अजर है, और वकूफ़ अरफा का क्या अजर है, और रमी जिमार का क्या अजर है, इस तरह बहुत सारी सारी बातें बताएं। तो उसने कहा अंसारी ने या रसूलल्लाह इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है हम आपसे यही सवाल करने आए थे। आपने फरमाया जब तुम अपने घर से बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हो तो तुम्हारी सवारी के हर कदम रखने और उठाने के बदले में अल्लाह तुम्हारी एक नेकी लिख देता है, एक गुनाह मिटा देता है, एक दर्जा बुलंद कर देता है। जब तुम तवाफ़ के दो रकत नमाज पढ़ते हो ना नमाज, तो तुम्हें औलादे इस्माइल से एक गुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है। जब तुम सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हो तो तुम्हें 70 गुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है। जब तुम जवाले आफ्ताब के बाद मैदान अरफा में वकूफ़ करते हो तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और तुम्हारी वजह से फरिश्तों पे फ़ख्र करता है। जब आप मैदान अरफा में खड़े होते ना, जो हज पे गए हैं उनको पता है वहाँ पे वकूफ़ करते हैं, वकूफ़ अरफा जिसको कहते हैं, खड़े होकर दुआएँ मांगते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों पे फ़ख्र करते हैं, फरमाते हैं ये हैं वो मेरे बंदे जो दूर दराज के इलाकों से बिखरे हुए बाल लिए हुए गुबार आलूद बालों के साथ आए हैं, ये मेरी रहमत और मेरी मगफरत की उम्मीद रखते हैं। सो अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों और समंदर के झाग के बराबर भी हुए तो मैं उनको भी माफ कर दूंगा। मेरे बंदो अराफात से मुजदलफा की तरफ जाओ, तुम्हारी भी मगफरत हो गई, और जिनकी तुम शिफात करोगे उनकी भी मगफरत हो गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रमी जिमार करते हो तो हर कंकरी के बदले में तुम्हारा एक कबीरा गुना माफ कर दिया जाता है और तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे रब के पास जखीरा की जाएगी, और जब तुम सर मुंडवाते हो तो हर बाल के बदले में एक गुना माफ कर दिया जाता है और एक नेकी लिख दी जाती है। और कुर्बानी का तो आपको पता है ना, कुर्बानी के जानवरों के ऊपर सवार होके पुल सिरात को क्रॉस करेंगे लोग। अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह अगर इसके गुना कम हो, आपने फरमाया तो फिर इसकी नेकियां जखीरा की जाएंगी, और जब तुम इसके बाद तवाफ़े ज़ियारा करते हो तो तुम इस हाल में तवाफ़ करोगे कि तुम्हारे पर कोई गुना नहीं होगा। फिर एक फरिश्ता तुम्हारे दो कंधों के दरमियान हाथ रख के कहेगा जाओ नए सिरे से अमल करो, तुम्हारे पिछले सारे गुना माफ़ कर दिए गए। सुभान अल्लाह। ये तवील हदीस है और इससे ये पता चलता है कि हर हर अमल जो हज पे किया जाता है उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान को किस तरह नवाजते हैं। और औरत का तो जिहाद ही हज है, और हर कमजोर का जिहाद हज है। तो कुदरत के बावजूद अगर कोई हज नहीं करता तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सफ़र हज और सवारी का मालिक हो जिसके ज़रिए वो बैतुल्लाह तक पहुंच सके, यानी आज के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जाने का ख़र्चा भी है, पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी लग सकता है, जो भी आप मतलब जो आज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती हैं, फिर भी वो नहीं जाता, इसके बावजूद वो हज ना करे, तो उस पर कोई अफसोस नहीं है, ख्वाह वो यहूदी होके मरे ख्वाह नसरानी होके मरे, यानी अल्लाह को फिर उसकी कोई परवाह नहीं। आप चाहे जाओ यहूदी होकर मरो या क्रिश्चन होकर मरो, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे नहीं तुम्हारी परवाह। कितनी बड़ी बात है ना। इसी तरह सही इब्ने हब्बान की रिवायत और बहकी की भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिस बंदे का जिस्म तंदुरुस्त हो और वो माली एतबार से भी खुशहाल हो और वो 5 साल तक मेरे पास ना आए तो वो जरूर महरूम है, महरूम है वो बंदा। औरत के लिए तो महरम की शर्त है, औरत महरम को साथ लेकर जाए, और महरम के अंदर जरूरी नहीं कि वो महरम अपना खर्चा खुद करे। अगर औरत मालदार है तो वो महरम रिश्ते का वो खुद नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके उसका खर्चा खुद अदा करके भी ले जा सकती है। मसलन भांजा है, भतीजा है या बेटा है, नहीं वो अफोर्ड कर सकते, औरत खर्च करे और उसको अपने साथ ले जाए। आजकल तो वो कहते हैं ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, बाहर कैफ वो उलमा के फतवे हैं आजकल के, उस बारे में नहीं हम जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जो इस्तेआत रखता हो फिर भी ना वो जाए, उसके लिए कितनी बड़ी वईद है। और अगर आप इस रास्ते में खर्च करते हैं ना, तो जो आपने खर्च किया उसको भी बेकार ना समझे, क्या इतने का पैकेज हो गया, इतना महंगा हो गया। ये ठीक है महंगा हो गया, वाकई वो बहुत ज्यादा महंगा कर देते हैं, लेकिन याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज में खर्च करना अल्लाह के रास्ते में 700 गुना ज्यादा खर्च करने की मसल है। अल्लाह के रास्ते में आप देते हो ना, उसको 700 टाइम्स बढ़ा दो, उसके बराबर है। 1 दिरहम यानी 1 दिरहम 1 डॉलर आप खर्च करते हैं, 700 टाइम्स ज्यादा है वो उससे जो आप कहीं और पे भी खर्च करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हज का नहीं सोचा, इस्तेआत रखते हैं कोई इंतज़ाम करें अपने लिए इस दफ़ा के हज पे जाने के लिए, कुछ सोचें, अभी भी मौका है कि आप अपने लिए कोई पैकेज खरीद सकते हैं, अभी टू लेट नहीं हुआ। तो इस चीज़ की फ़िक्र करें कि मुझे हज करना है, क्योंकि देखें जो चीज़ इंसान के ज़िम्मे है, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, हम अगला साल करके टालते रहें और वक्त इसी तरह गुजरता जाए और मौत आ जाए। तो इसलिए जो चीज़ ज़िम्मे है, बेहतर यही नहीं है कि इंसान जल्दी से जल्दी वो ज़िम्मेदारी पूरी कर ले? और अगर नहीं कोई करता ना, अल्लाह गनी है, गनी है, यो नानिल आलमीन है, ये ना समझो कि अल्लाह को तुम्हारे कोई हज की ज़रूरत है, तुम्हारी बातों की ज़रूरत है, तुम्हारी इसकी ज़रूरत है, नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है। तुम हज कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, देखिए जन्नत मिलेगी आपको मिलेगी, गुनाह माफ़ होंगे आपके होंगे, निकियाँ मिल रही हैं आपको मिल रही हैं, अल्लाह ताला को कोई इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। वो गनी है, वो बेपरवाह है, उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए तुम ये समझ के जाओ कि तुम अपने लिए भलाई कर रहे हो। वो किसी ने एक बड़ा खूबसूरत फारसी का शेर है ना, तो उसका तर्जुमा यह है कि बादशाह पे एहसान ना करो कि तुम उसकी खिदमत में लगे हुए। अगर आप कोई दीन का काम कर रहे हैं या कोई इबादत कर रहे हैं या कोई अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी कि आज आप कुरान सीख रहे हैं, तो बादशाह पे एहसान ना धरो कि तुम उसकी खिदमत में लगे हो, उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत में कबूल फरमा लिया है, ये उसका एहसान है। अगर आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए कुछ सीख रहे हैं, तो ये उसका एहसान हम पे है कि उसने हमें इस खिदमत के लिए कबूल कर लिया। समझ आई बात? इसके लिए चुना कि हम उसके कुरान को सीखें, या इसके लिए चुना कि हम उसकी इबादत कर सकें। कुल कह दीजिए या अहले किताब, ए अहले किताब। अब अहले किताब को फिर से खिताब है। अब ये बात समझ आ गई ना आपको आयत 96 से, फिर आगे ये 96 में उनकी उस बात का जवाब था, और साथ ये वहाँ की निशानी और वहाँ का मकाम और जो वो जगह उसकी जो बरकतें और जो खैर और ये सब चीज़ें वो मेंशन की गई, और हज की बात मेंशन कर दी गई, और फिर उसके बाद फिर अहले किताब से खिताब है। लिमा तकफुरूना भी आयात इल्ला, अहले किताब तुम अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो? तो अल्लाह को पता है कि तुम जानते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये दीन हक है, फिर तुम्हारी क्या मुश्किल है? इतनी दलीलें देख के भी तुम नहीं मानते। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाह गवाह है इस पे जो तुम अमल करते हो। तुम्हें ये बात नहीं समझ आती कि जो तुम हरकतें कर रहे हो, जैसा तुम इनकार कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी सारी हरकतों को। अल्लाह की नज़रों का एहसास जो है ना, वो इंसान को सीधा कर देता इंसान को। इसलिए कि देखिए, किसी की भी नज़रें अगर आपके ऊपर हैं, किसी की भी नज़रें सोचें, अगर कोई इस वक्त मुझे वॉच कर रहा है, कोई इंसान भी, तो जो आप इस वक्त राइटिंग कर रही हैं क्या वैसे ही लिखेंगी? अरे नहीं, कोई देख रहा है, ये अच्छी अच्छी लिखूं। क्या बोलने का अंदाज़ यही रहेगा? कुछ खा रही हैं अगर आप, तो खाने में फ़र्क आएगा? जैसे आप बैठी हुई हैं इस वक्त, अगर आपको पता चल जाए कि टीचर मुझे देख रही हैं, तो क्या ऐसे ही बैठेंगी? नहीं ना, फर्क आता है ना। फर्क आता किस लिए? कि जब आपको ये पता चलता है कि किसी की नज़र मेरे ऊपर है, आप नज़र को महसूस करने लगते हैं। अगर इस कंप्यूटर से, इस फ़ोन से सबके घरों की तस्वीरें भी आने लगती, तो बताएं ज़रा, क्या हम इसी तरह होते जिस तरह से अभी हैं? तो अगर इंसानों की नज़रों का एहसास हमें सीधा कर देता है, तो जिसको ये पता हो कि मेरे ऊपर अल्लाह की नज़र है, अल्लाह मुझे मॉनिटर कर रहा है, अल्लाह ताला मुझे मुसलसल वॉच कर रहा है, मुझे बताएं उसका अमल बदलेगा कि नहीं? वो क्या ऐसा ही रहेगा? अगर इंसानों की नज़र पे इंसान इतना कॉन्शियस हो जाता है, तो अल्लाह की नज़रों का यकीन नहीं है ना। अगर यकीन हो तो हम इतने इस जितने इंसानों की नज़रों से कॉन्शियस होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इस वक्त वो मुझे वॉच कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह गवाह है, वो देख रहा है जो भी तुम अमल कर रहे हो। तो क्या अमल बदलना नहीं चाहिए फिर? कुल, कह दीजिए, या अहलल किताब लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना, क्यों तुम रोकते हैं अहले किताब, क्यों तुम रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से उसको जो ईमान ले आए? जो ईमान लाता, तुम उसके लिए हर रास्ते में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देते हो। कैसे रुकावटें पैदा करते थे? देखें, ये लोग ऐसे थे, एक तो खुद तो रुकते ही रुकते थे, ना खुद चलना ना दूसरे को चलने देना, वही वाली बात है ना, जैसे आज हमारे भी कई मुसलमान हैं, ना खुद अमल करते ना दूसरे को करने देते ना, खुद तो डूबेंगे, सनम तुझे भी ले डूबेंगे, वही वाली बात है कि खुद तो उल्टे रास्ते पे जाना, दूसरे को भी उल्टी राह डालना। तो वो लोग क्या करते थे, खुद तो नहीं उन्होंने ईमान लाना, लेकिन दूसरों के दिलों के अंदर भी डाउट्स डालते थे। और लोग, इनका ईमान ना लाना भी एक्चुअली क्या था, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाली बात थी। क्यों? इसलिए कि लोग ये सोचते थे कि ये इतने पढ़े लिखे, इतने पीपल ऑफ द बुक, इतने आलिम फाजिल, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे, ये तो उनके साथ मिल के लड़ने के लिए कहते थे, ये तो इतना उनके उनके चर्चे करते फिरते थे, और फिर इनके पास नॉलेज भी इतना है। तो अगर ये ईमान नहीं ला रहे ना कोई तो ज़रूर मसला होगा। जैसे आज हम कह देते हैं ना, अरे ये इन फलां लोग हैं, उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, आज कहां से कहां पहुंच गए, भला उनको नहीं ये बात समझ आती कि बुतों के सामने नहीं झुकना? कैसे हो सकता कि उनको ना समझ आए? अच्छा, बोले फलां हैं, वो तो इतना पढ़े लिखे हैं, उनके पास तो इतनी डिग्री हैं, वो तो PhD, उन्होंने तो इतनी बुक्स लिखी हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो बिदतें बता रहे हों, बिदात करते हों, बिदात में पढ़े हों, ये कैसे हो सकता है कि उनका अकीदा ख़राब हो, गलत हो? तो हम इस तरह से सोचते हैं। तो यही वो लोग भी सोचते थे कि ये तो इतने पढ़े लिखे सब हैं, और हम अपने फैसले भी इनके पास कराने जाते थे, कैसे हो सकता है इनको ना बात समझ आई हो, ये तो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो उनका एक्शन भी लोगों को रोकता था ना। तो इंसान को बाज़ दफ़ा ये एहसास भी नहीं होता कि हमारा कुछ अमल, कुछ करना या कुछ ना करना भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी बन सकता है और उनको भगा भी सकता है। समझ आई? इसी तरह ये ज़ुबान से भी रोकते थे, सिर्फ इनके एक्शन से ही नहीं, इनकी ज़ुबानों से भी रोकते थे। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुबह को ईमान ले आओ, शाम को काफिर हो जाना, इस तरह की हरकतें भी करते थे ताकि लोगों को डाउट्स हो जाए इस दीन के बारे में। तब गुना है आयवा जा, तुम तलाश करते हो इसमें कजी, दीन में तो कोई टेढ़पन नहीं है, लेकिन ये तलाश करते हैं उसमें से, क्योंकि टेढ़पन कहाँ है, इनकी अपनी अकलों में। ऐसे ही है जैसे आपने अगर टेढ़ी ऐनक लगा ली है ना, जिस ऐनक से टेढ़ा नज़र आता है, तो आपको सारी दुनिया की चीज़ें उल्टी नज़र आएंगी, टेढ़ी नज़र आएंगी, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, लेकिन आपने वो ग्लासेस लगाई हुई हैं जिससे आपको हर चीज़ टेढ़ी नज़र आए। इनका भी हाल यही था, दीन में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स निकाल के लाते हैं और ऐसे ला के उनको लोगों के सामने उछालते थे, ऐसे बताते थे कि لوگ بس شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، آیتوں کا غلط تعویلیں، غلط انٹرپریٹیشنز کر لیتے تھے۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھیں جو مٹیریل ڈالا جاتا ہے، کتنا کرٹیسزم، کتنے سوالات مسلمانوں سے ایسے کیے جاتے ہیں، کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنی باتوں کے اوپر ان کو اعتراض ہوتے ہیں، جو پھر آگے مسلمانوں کے سامنے جب رکھتے ہیں نا، تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ان سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے، کچھ انفارمیشن لینی ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، تاکہ مسلمان بھی ڈاؤٹ کرنے لگے اپنے دین کو۔ کیا آج ہے نہیں، چار شادیوں کے اوپر کتنے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں، حالانکہ داؤد علیہ السلام، جو یہودی تو ان کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، سٹار آف ڈیوڈ بولتے بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کی پتہ ہے کتنی بیویاں تھیں؟ کوئی ان سے پوچھے کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ اسلام نے تو چار کی ریسٹرکشن کی، ان کی تو 100 بیویاں تھیں۔ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی لونڈیوں کا پوچھنے شروع جاتے ہیں، لونڈیوں کے ساتھ پھر تعلقات کا کیا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں، کبھی ہوموسیکسولیٹی پہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے کہ یہ کتنا بڑا سین ہے، تو تم تو بڑے ظالم ہو کے اس طرح سے کرتے ہو۔ تو مطلب ایسی ایسے نکتے، پوائنٹس ایسے ایسے نکال کے لے کر آتے ہیں نا، جہاں پہ کہیں مسلمان بھی، چونکہ ہم جاہل ہیں، ہم اپنے دین کا خود علم نہیں رکھتے، تو اب ہم بھی ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ واقعی صحیح کہ تو کہتے ہیں یہ۔ وَأَنتُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہیں خود پتہ ہے، تمہیں خود سارا معلوم ہے۔ تم لوگوں کو سوچتے ہو کہ ہم ان کو راستے سے بھٹکا کے، روک کے، اور یہ عوج نکال نکال کے لوگوں کو اس راستے سے ہٹا دیں گے؟ نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، تم اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکو گے، یاد رکھنا، یہ جو تم لوگوں کو بھٹکا رہے ہو یہ تمہارے آگے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو خطاب ہے، اب ایمان والا تم کیا کرو، اب یہ پہلے جو باتیں کی گئی ان کو کہا گیا، کیوں ایسے کرتے ہو تم، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم کیوں خود کیوں نہیں مانتے ہو، اور اب ایمان والوں کو کہا گیا، اب وہ مانے نہ مانے تمہیں کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی، سارے اہل کتاب کی نہیں بات کی جا رہی، ایک گروہ، کون سا وہ ایک گروہ، جو ان کے علماء تھے، اگر تم ان کے یعنی اس گروہ کی، اس ایک اسپیسیفک گروہ کی اطاعت کرو گے، ان کو فالو کرو گے جو کتاب دیے گئے ان لوگوں میں سے، یار ادوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کافر بنا کے ہی رہیں گے۔ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ انصار مدینہ جو تھے، ان کے بہت کلوز ریلیشن شپس تھے یہود کے ساتھ، پہلے سے چلے آ رہے تھے، ظاہر ہے ایک ہی جگہ رہتے تھے، ان کے ساتھ حلیف بھی ان کے تھے، ان کے ساتھ بہت ان کا قبائل کا آپس میں ٹائز تھے، تو اب کتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ اسلام لانے کے بعد بالکل ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں جیسے پہلے بھائی چارہ تھا، پہلے جیسے ایک اتنی کلوز فرینڈ شپس تھیں۔ اب ظاہر ہے ان کا ایک جو گروپ تھا، یعنی جو ان کے علماء تھے، ان کا تو یہ ایجنڈا تھا کہ ان کو کسی طرح ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، چاہے تو یہ پرانے اپنے اس کے اوپر لوٹ جائیں شرک پہ ہی جیسے پہلے تھے، یا پھر یہ اس دین پہ نہ رہیں۔ بس یہ دیکھیں کیوں علماء کا کہا گیا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، اس لیے کہ عوام جو ان کی تھی، ان کے پاس بھی اسی طرح علم نہیں تھا جیسے آج ہماری عوام کے پاس علم نہیں، تو علماء جو تھے نا وہ بہکاتے تھے لوگوں کو، اور ان میں یہود اور نصارہ دونوں آ گئے اوت الکتاب میں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے، اور اطاعت کیسے کی جاتی ہے، جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں، آپ ان کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ آج بتائیں، آج اطاعت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اصل میں جب انسان کسی کو فالو کرنے لگتا ہے نا، تو ایکچولی وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے، मुझे इतना नहीं पता, इसको ज़्यादा पता इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। ऐसे ही होता है ना, आप किसी को जब फॉलो क्यों करते हैं जब खुद ही नहीं पता होता आपको रास्ता। आज वो उम्मत जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो दूसरों को राह दिखाती, वो उनको फॉलो कर रही है जो खुद मकदूब हैं और दौलीन। जो उम्मत इसलिए उठाई गई थी कि तुम दूसरों को रहनुमाई करोगे, उनकी उनको गाइड करोगे, वो दूसरे उन्हीं को अपना रहनुमा बना के बैठ गई है। आज आप देखें पूरी उम्मत मुस्लिमा वेस्ट की इताअत पर फख्र करती है। आप कहीं चले जाएं किसी मुसलमान मुल्क में, आज हर जगह इस चीज पे फख्र किया जाता है, इनकी इताअत करने में फख्र किया जाता है। क्रिसमस का टाइम आएगा तो वहां पे भी क्रिसमस के सॉन्ग्स बजने लगेंगे, क्योंकि ये फख्र की बात है। हम भी क्रिसमस के देखो ऐसे सॉन्ग्स लगाते हैं और हम भी इस तरह से इस तरीके को पसंद करते हैं तुम्हारे। अब जब दिल है ना, ये दिल जब दिल किसी का गुलाम हो जाता है तो फिर उनके तरीके अच्छे लगने लगते हैं, अपने तरीके फिर बुरे लगने लगते हैं। तो हमने दूसरों के तरीके कबूल कर लिए, अपने तरीके छोड़ दिए। और यहूद की तो यही चाहत है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से किसी तरह हटा दे। हमने पहले पढ़ा है ना, इन लोगों की ये चाहत है किसी तरह तुम अपने दीन से हट जाओ। उलट हमारे सारे काम देखें, एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, औरतें कवर करें, उनके टखने भी कवर हो। मर्दों को हुक्म क्या दिया, टखने नंगे करो, एंकल्स को अपने। आज क्या है, औरतें कैप्रीज पहन रही हैं, औरतें टखनों से ऊपर शलवार खींच रही हैं, ये फैशन है। हाँ, और मर्द अगर वो ही अपनी पैंट्स टखने से ऊपर कर ले तो वो गवार समझा जाता है। कैसे हमारे स्टैंडर्ड्स बदल दिए ना। आज देखें इस तरफ को उम्मते मुस्लिमा को लगा दिया कि उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं के कस्टम्स, उन्हीं के कल्चर, उन्हीं का पहनना ओढ़ना, उन्हीं के जो तरीक़ाकार है, सब वो ही पसंद है, वो ही करना चाहते हैं, उसी को अप टू डेट चीज़ समझते हैं। और अपने तरीके बैकवर्ड लगते हैं। यही तो उनका काम है, इस्लामी निजामे जिंदगी को ऐसा दिखाना कि इंसान सोचे ओ ये तो कभी अमल नहीं इसके ऊपर हो सकता, ऐसा करके दिखा देना। तो तुम्हें तो या रुद्दुकुम बादा ईमानिकुम, तुम्हें तो वो फेर देंगे ईमान के बाद, तुम तो उल्टे पलट जाओगे। अब इस्लामिक निजामे जिंदगी अगर कहीं पता चल जाए ना कि इस्लाम का निजाम यहाँ पे आ रहा है तो लोग कांपने लगते हैं, हाय अच्छा आ जाएगा। तो फिर हमारे ये जो इश्क महाशके के ड्रामे हैं और जो हमारी ये फिल्में हैं और जो हमारी ये शायरी है और ये जो हमारे नेट कैफेज हैं और ये जो हमारा ये सारी चीजें, हमारा क्या बनेगा इसका, ये तो नहीं फिर हो सकेगा। आज इन चीजों को ऐसा बना दिया है, ऐसा दीन की जो दीन हमें हमारा दीन लाइफस्टाइल देता है उसको ऐसा नामुमकिन बना दिया है, ऐसा नाकाबिले अमल बना के पेश किया है कि लोग कांप जाते हैं, हाय ऐसा ना कहीं आ जाए, फिर तो हमें ये सजाएं मिलने लगेंगी, फिर तो हाथ कटने लगेंगे, फिर तो फलां होने लगेगा, फिर तो शराब पे पाबंदी हो जाएगी, फिर हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, फिर तो सूद हराम हो जाएगा। तो यहूदी तो अहले किताब को तो ये चाहते हैं तुम्हें वापस वरगला के ले जाएं, तुम भी उनके पीछे चल पड़े। बार बार देखिए इस सूरत के अंदर ये बात आ रही है, उनकी यही चाहत है, उनकी यही चाहत है, लेकिन हमें होश नहीं आता फिर भी। वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। अब ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम्हारे अंदर तो पड़ी जाती है अल्लाह की आयत, तुम कैसे इनसे मुतासिर हो सकते हो, इनकी बातों में आ सकते हो, तुम पे दिन रात अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं। और कौन पढ़ता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजों में तिलावत हो रही है, वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और तदरीस कर रहे हैं, इनको सिखाया जा रहा है, وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم کیسے پلٹ سکتے ہو؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے نا، کیونکہ قرآن کی آیات سن کے آج سوچیں، اگر ہم کسی اچھے خوبصورت آواز کسی کی ہو، اس قاری سے ہی سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے ہوں گے تو سوچے کیا سما ہوتا ہوگا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں جو چلتا پھرتا قرآن تھے، تم کیسے پھر انکار کر سکتے ہو؟ یعنی یہ تو تمہارے شایان شان ہی نہیں ہے، تم ان کی باتوں پہ کیوں کان دھرتے ہو، اور تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، یعنی یہ کیفہ جو ہے تعجب کا ہے، ہاؤ کم، ہاؤ از اٹ پاسبل تم یہ کرو گے؟ اور آج دیکھیں، ظاہر ہے ہماری تو اتنی ایمانی قوت تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں صحابہ میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن سنتے تھے، لیکن آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے مگر قرآن تو موجود ہے نا، یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ لوگ سنتے تھے، اور احادیث تو موجود ہے نا، یعنی جب آپ ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے نا تو پھر تو آپ انکار نہیں کر سکتے، پھر نہیں آپ ان کے طریقوں پہ جاؤ گے، پھر نہیں آپ ان سے فول بن سکتے، ان کی باتوں سے فریب نہیں کھا سکتے، پھر آپ دھوکہ نہیں آپ کو ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھیں، ان کو مینشن اسی لیے کیا گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے انکار کر سکتا، لیکن افسوس تو یہی ہے کہ جب ہمارے بیچ میں قرآن ہے لیکن ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں، قرآن کو پڑھتے اور سیکھتے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فزیکل وجود تو ہمارے سامنے نہیں ہے، پھر کیسے اس کو تھامے؟ بات یہ ہے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لینا، ایسے ہی ہے کہ ہم نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لی، جو اللہ سے چمٹ جائے گا فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہدایت دے دیا گیا، بس اس کو ہدایت مل جائے گی پھر سیدھے راستے کی، جو چاہتا ہے نا صراط مستقیم پہ چلنا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، اللہ سے چمٹنا پڑے گا، اور اللہ سے کیسے چمٹے گا؟ اس قرآن کے ذریعے چمٹے گا، اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن پاک کو کھولتے تھے، اس کو پڑھتے تھے تو ان کے آنسو رواں ہو جاتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اتنا ان کے دل پہ اثر ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی باتیں۔ تو مسلمان سازشوں سے اگر بچنا چاہتا ہے، وہ تو سازش کریں گے، وہ تو باتیں کریں گے، وہ تو بہکانے کی کوشش کریں گے، اس وقت بھی کی آج تک بھی کریں گے، لیکن تم بچ کیسے سکتے ہو کہ جب تم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے، اور جب دیکھیں کوئی رسی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اگر آپ رسی کا ایک سرا پکڑ لیں اور دوسرا کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ سرے کو کھینچے گا تو آپ اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا، تو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوگا، چھوڑنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں تمہیں اپنی طرف کھینچ لوں گا، اور منزل تو ظاہر ہے اللہ کی ذات ہی ہے نا، تو اللہ سے آپ چمٹ جائیں گے پھر جب وہ آپ کو کھینچ لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ سیدھا آپ کو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور آخری سانس تک ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے۔ یہاں تک تلاوت سنیں، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں اور غور کریں انشاءاللہ ان الفاظ پہ۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم